अब यहां से आगे थोड़ा सा फिर एंगल बदलेगा। वाइन द कसू, यहां तक थी मोहलत, मान लो प्यार कर लो, इनको जाने ना दो, ये बड़े अच्छे लोग हैं, आ जाएंगे दीन पे तो तुम्हारे दीन को फायदा होगा। लेकिन अब इतनी रियायतें आखिर कब तक? कब तक एक शौहर बर्दाश्त करे? आखिर फिर बीवी को छोड़ता ही है। कब तक माँ बाप किसी बच्चे के सितम बर्दाश्त करते हैं, फिर उसको अपने हाथों से घर से निकालते हैं? इसी तरह आखिर कब तक फिर ऐसे लोगों को अल्लाह अपने दीन वालों के साथ रखे, और कब तक अल्लाह के नबी को सबर और बर्दाश्त का हुक्म देता? तो अब अगली आयतों में बिल्कुल ही ऑपोजिट किरदार। वाइन नकसू, और अगर ये तोड़ दें, नून का अफसा रूट है, नक्स का लफ्ज़ पीछे भी हम पढ़ चुके, तोड़ने के लिए खास तौर पे अहद तोड़ने के लिए ये लफ्ज़ आता है। इशारा है इसमें सुलह हुदैबिया की शर्त को तोड़ने का। पूरा पढ़ लें फिर इंशाल्लाह, जहां तक मजमून पूरा होगा आपके सामने रखूंगी इसकी वजाहत। वइन नकसु अईमानहुम, और अगर ये लोग तोड़ दें अपनी कस्में। अईमान जो है या मीम नून रूट है इसका, और कस्मों के लिए आता है, पीछे हम देख चुके ये बात यमुना से। अरब लोग जो थे कसम खाते हुए दायां हाथ हाथ पे रखते थे, जैसे शेक हैंड करते थे, आज के दौर में मुसाफा करते हैं, उसी से फिर कसम के लिए यमीन और यमुना का लफ्ज आ जाता था। और ईमान जमीन की जमा, कसम और अहद के मानों में। फिर उसके बाद क्या हुआ? अगर ये अपनी कस्में तोड़ दें, कब? मिम बाद अहदिहिम, इसके बाद कि उन्होंने अहद कर लिया। यहां लफ्ज अहद के नीचे लिखी है सुलह हुदैबिया। इंशाल्लाह बिल्कुल तफसीर आपके सामने आ जाएगी सिर्फ आयतों को पढ़ने से। पहली बात, ये खुद ही अहद तोड़ दें। दूसरी चीज, वतानू फी दीनिकुम, और ताना दें तुम्हें दीन के मामले में, यानी तुम्हारे दीन पर ताने लगाएं। तान का लफ्ज जो है तोय आइन नून से है, नेजा मारने को कहते हैं अरबी जुबान में। ये जो ताना देते हैं ना हम दूसरों को, वे भी, ये भी असल में उसको तीर ही लगता है। जो दे रहा होता है उसको तो शायद कम पता चलता हो, लेकिन दूसरे को पता चलता है कि उसकी बात तीर की तरह दिल के अंदर लग गई उसके। तो फिर इसी से जुबान दराज करने, बड़े बड़े मतलब किसी के ऊपर इल्जाम लगाने, ये सारी चीजें उसी के अंदर आ जाती हैं। तो क्या करो फिर? पहली बात, ये वादे तोड़ दें, कस्में तोड़ दें। दूसरी बात ये है कि तुम्हें दीन के मामले में तंग करें, तुम्हें टेररिस्ट कहें, तुम्हें एक्सट्रीमिस्ट कहें, तुम्हें फंडामेंटलिस्टिक कहें, तुम्हें मौलवी कहें, तुम्हें मुल्ला कहें, तुम्हें दीन के मामले में जहां भी तंग करें, जहां भी तुम्हें तकलीफ दें, तो करो क्या तुम? फकातिलू आइम्मतल कुफरे, तो जंग करो कुफर के पेशवाओं से। फिर छोटे छोटे लोगों को ना टारगेट करो, बड़े सर को पकड़ो, बड़ी बड़ी ताकतों को हदफ बनाओ, जहां से सारी सोचें आती हैं और दूसरों को लेकर जाती हैं। आइमा का जो लफ्ज है ये इमाम की जमा है, और इमाम तो सबको पता है कि, पता है ना सबको, इमाम लफ्ज तो बड़ा प्यारा है, बहुत पसंदीदा है सबका, है लीडर, बड़ा बनना, तो इमाम लफ्ज है। यानी फिर कुफर के जो बड़े बड़े आइमा हैं उनके साथ लड़ो, सरदारों को पकड़ो। आम लोग क्या करेंगे? वो बेचारे मुसलमान हो भी गए या मर खप भी गए तो उससे कोई इतना फर्क थोड़ी पड़ेगा। ये ऐसे ही कि जैसे बीमारी की असल रूट काज को पकड़ो, असल चीज को पकड़ो और उनको मारो। क्यों भाई? इसलिए कि इन्नहुम ला ऐमान लहुम, बेशक इनकी कस्में तो कुछ है ही नहीं, काबिले एतमार है ही नहीं, काबिले एतबार इनकी बातें है ही नहीं है, इनके पास अहद की पासदारी का कोई सबूत ही नहीं है। मुराद है, इशारा है इसमें अल्लाह के नबी को कि सुलह हुदैबिया को तोड़ दीजिए, खत्म करें, छोड़ें। क्यों? लाल लहुम यंतहून, ताकि ये बाज आ जाएं। नून हा या इसका रूट होता है नहीं से। किस बात से बाज आ जाएं? अहद शिकनियों से बाज आ जाएं। यानी जब ये नहीं आते तो फिर तुम क्यों इनकी तरफ पढ़ते हो? छोड़ो इनको, मारो इनके मुंह पे, अब तुम्हें ये सता ही नहीं सके। ये बार बार धमकियां देते हैं ना कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, हम तुम्हारे साथ वो कर देंगे, तो फिर तुम खुद ही इनको खात्मे पीछे कर दो, फिर इनके मजीद जुर्म बताएंगे। अला तो कातिलू न कौमन न कसू ईमान न हूं, क्या नहीं जंग करोगे तुम उस कौम से जिन्होंने तोड़ डाला अपनी कस्मों को? फिर सुलह हुदैबिया की तरफ इशारा है, ये पहला जुर्म था इनका। वहम्मू बिखराज रसूल, और इन्होंने इरादा किया रसूल को निकालने का। हम्मू का लफ्ज हा मीम हम, ऐसा गम जो दिल में, यानी ऐसा ऐसी सोच जो दिल में गम भी पैदा करती है ना। एक हदीस में भी ये दुआ आती है, मिनल हम्मी वल गम व गम्मी, तो हम गम होता है और हर गम हम बन जाता है। ठीक है, कहा ऐसे लोगों को पकड़ो और खत्म कर दो, क्योंकि इन्होंने रसूल को निकालने के इरादे किए हुए थे। ये कौन थे? यहूद, मुनाफिक सारे ही थे। अल्लाह के नबी को मक्का से निकलने की जो धमकियां थी, और बास कहते हैं कि इससे मुराद यहूद भी हैं, क्योंकि हज के मौके पर पीछे जो अभी हमने सूरत के शुरू में देखा कि नई पॉलिसी अनाउंस हुई कि अब कोई काफिर इधर नहीं आएगा, तो डर था इस बात का कि कहीं ये बची खुची जमात मिलके फिर मुसलमानों पे हमला ना कर दे, कोई बगावत ना आ जाए, कोई मुसलमानों में फिर फिरका वारियत की आग ना भड़क जाए, क्योंकि आखिर माहदे टूटे, मनसूख हो गए, काबा की तवल्लियत से ये महरूम हो गए, हज करने के लिए अब ये नहीं आएंगे। सोचिए तो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, जो अपने आप को जागीरदार समझे किसी जगह का, चाबियां ना दें किसी को उस जगह की, उनको कह दें निकालो इनको यहां से, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो डर था इस बात का कि कहीं दोबारा ये मुसलमानों के साथ कोई ऐसा मामला ना कर दें कि मुसलमानों के गिरोह में फूट पड़ जाए। तो कहा इससे पहले कि ये तुम्हारे तरफ पड़े, तुम इनकी तरफ बढ़ जाओ, और इशारा था अल्लाह के नबी के लिए कि अब फतेह मक्का के लिए निकलिए, छोड़े इनको। बहुत दावत दी, बहुत दफा पुकारा, मोहब्बत के हाथ बढ़ाए, दोस्ती की दावत दी, लेकिन जब इन्होंने सोचा ही नहीं, समझा नहीं, तो क्या हम बुद्धू बने रहोगे, बेवकूफ बने रहोगे? अब चलो निकलो, तुम क्यों नहीं लड़ोगे? अल्लाह तो कातिलून, ऐसे लगता है कि रगबत दिलाई जा रही है, तरगीब दी जा रही है। इन्होंने वादे तोड़े, इन्होंने रसूल को निकाल दिया। वहुम बदऊकुम अव्वल मर्रतिन, और पहली दफा भी तो आगाज इन्होंने किया था तुम पर ज्यादती का, यानी बदर के लिए आए थे तो ये आए थे, इन्होंने ही तो तुम्हें मक्का से निकलने पर मजबूर कर दिया था, इन्होंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा कुछ किया? आप जरा मक्का वालों की रंग से अल्लाह के नबी को देखें, तो हमारी जुबान में जैसे कहते हैं ना कि तुमसे तो मैंने कभी खैर ना पाई, तुम्हारे पास मेरे लिए खैर नहीं है, बिल्कुल यही हाल था। तो अल्लाह कह रहे हैं कि इतने साल से तुम इनकी बातों को बर्दाश्त कर रहे हो, तो अब छोड़ दो, जो कर रहे हैं करने दो। और ये जो लफ्ज अला है ना शुरू में आयत के, अला तो कातिलून, ये हर्फ हज होता है, हर्ज रगबत दिलाना, पीछे पढ़ चुके ना, हर दिल मोमिनीन अला किताल, द्वात से स्वाद और द्वात वाला जो द्वात होता है, कि इनके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। इन्होंने बदर में तुम्हारी तरफ पहल की, और दूसरे इसकी तफसीर ये भी आती है बदाऊकुम अव्वल मर्रा में, कि खुजाया पर बनू बकर ने जो हमला किया था, अभी थोड़ी सी मैं इसकी तफसील बताऊंगी तो बात वाज़े हो जाएगी इंशाल्लाह। फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौहु, नहीं थोड़ा सा लफ्ज छूट गया, अतख्शौ ना हो, क्या तुम उनसे डरते हो? तुम्हें खौफ आता है कि अगर जंग की इधर अगर फौजें ले गए तो ये तुम्हें मारेंगे या तुम कमजोर हो जाओगे? अल्लाह ताला नबी सल्लम को मजबूत कर रहे हैं। कुछ एक और भी खौफ सहाबा में से कुछ को आ गया होगा कि मुआहदे जब टूट गए तो हमारी तिजारत कमजोर हो जाएगी, या ऐसी जैसे कह दिया जाए कि फलां मोल की मसनूआत को बैन कर दें, तो कुछ स्टोर्स वाले कहेंगे हाय हमारी सेल कम हो जाएगी। तो डर हुआ कि अब जब अगले साल से काफिर इधर नहीं आएंगे, तो ये तो बड़ी शॉपिंग करते थे हज और उमरे पे आके, अब ये नहीं आएंगे या इस साल थोड़े लोग आएंगे, हो सकता है अब भी किसी के दिल में आए जिसकी हरम के बाहर दुकान है, पता चले इस साल लोग हज में कम लोग आ रहे हैं, जब पाबंदी लगा दी हुकूमत ने, तो वो कहेंगे हाय फिर हमारी सेल कम होगी, तो कहा तख्शौ ना हो, तुम उनसे डरते हो या अपने मंदा होने से डरते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे मुफादात पे जद पड़ेगी, हालांकि फल्लाहु अहक्कु अन तख्शौ हो, अल्लाह ज्यादा हकदार है कि उससे डरा करो। इसलिए पहली तफसीर ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती है कि लोगों का डर ज्यादा था उनको, माल की कमी का डर नहीं था, कि तुम इनको इनसे ना डरो, अल्लाह से डरो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर हो तुम ईमान लाने वाले। अब यहां इन सारी आयतों को अगर हम जमा करें, वैसे तो मेरा ख्याल है कि अगली भी दो आयतें, चलें अगली को बाद में देखेंगे वरना फिर शायद आप लोग कैचअप नहीं कर पाएंगे, ये जो भी आयतें मैंने आपके सामने इकट्ठी रखी, इन सब का सिनेरियो आपके सामने रख देती हूँ, तो इंशाल्लाह बात बिल्कुल क्लियर आज हो जाती है। और वो क्या है, पीछे हम देखते आए कि सन 6 हिजरी में मुसलमान उमरे की नीयत से मक्का की तरफ गए, वहां पे सुलह हुदैबिया हुई। सुलह हुदैबिया की शरायत में एक शर्त थी कि 10 साल तक मुसलमानों और मक्का वालों के बीच में जंग नहीं होगी, और किसी दूसरे के खिलाफ वो मदद नहीं करेंगे। यानी मिसाल है बनू बकर और खुजाया, दो कबीले थे, एक की दोस्ती जो थी वो मुसलमानों से थी और एक की काफिरों के साथ थी। खुजाया मुसलमानों के दोस्त थे और बनू बकर जो था वो कुरैशियों के दोस्त थे, तो अगर ये दोनों कबीले आपस में लड़ पड़ते हैं तो कुरैश जो है वो बनू बकर की मदद नहीं करेगा और मुसलमान खुजाया की नहीं करेगा। لیکن ہوا کیا، صرف 2 سال بھی نہیں گزرے، 6 ہجری میں معاہدہ ہوا، 7 ہجری میں عمرہ قضا کے لیے مسلمان گئے، واپس آ گئے، خاموشی رہی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تھوڑا سا امن مل گیا تھا کہ اب جنگیں نہیں ہوں گی، معاہدہ ہو گیا، تو اب سو گئے تھے چھٹیاں لے کے 1 سال کی کہ اب کورس پورا ہو گیا، اب سو جائیں؟ نہیں، آپ نے دعوت کا کام شروع کر دیا۔ اس دور میں اللہ کے نبی نے غیر ملکی مسلمان بادشاہوں کو خط لکھے، حبشہ، ہرکل اور جو کہانی آپ سیرت میں پڑھتے ہیں۔ تو خیر ہوا کیا کہ جب سن 8 ہجری ہوئی تو بنو خزاعہ اور بنو بکر 2 قبیلے آپس میں لڑ پڑے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی روشنی پہ نہ مسلمان اپنے حلیف قبیلے کی مدد کر سکتے تھے اور نہ قریش مکہ، لیکن مکہ والوں نے غدر کیا، انہوں نے بنو بکر کا ساتھ دیا۔ جب انہوں نے ساتھ دیا تو بنو خزاعہ روتے پیٹتے مدینہ میں آ گئے، اللہ کے نبی ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، کیا ہوا کہ قریش نے ہمارے ساتھ سختی کی۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا کہ قریش نے وعدہ توڑ دیا، بس میں تو اللہ کے نبی کے مزاج کی جو چیز سمجھ سکی ہوں نا سیرت کو پڑھ پڑھا کے، وہ یہ ہے کہ آپ انتہائی شفیق، انتہائی پولائٹ، نرم مزاج سب تھے، لیکن بے ترتیبی، ظلم اور وعدہ شکنی یا کمٹمنٹ کو نہ نبھانا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ انتہائی غصہ آپ کو آیا، آپ نے کہا اچھا یہ کیا، ٹھیک ہے ہماری طرح۔ یہ تو گویا کہ قریش نے خود ہی اناؤنس کر دیا کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا، یہ بات پھیل گئی، مکہ میں بات گئی۔ اب دیکھیے کہ مکہ میں بیٹھے ہیں، اتنی تیاری ہیں اور کانپ رہے ہیں کہ ہائے ہائے یہ کیا ہوا۔ ابو سفیان وہاں سے اٹھے، ابھی کفر پہ تھے، آگے مدینہ میں پلیز 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 والا رویہ، معاہدہ جوڑ لیں، تجدید کر لیں، رینیو کر لیں، اس کو آپ نے بات ہی نہ سنی۔ وہاں سے اٹھا، ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، عمر کے پاس آئے۔ یہ تفصیلی واقعہ انشاءاللہ آپ سیرت میں سن سکتے ہیں۔ خیر قصہ مختصر، سر میں خاک ڈالتا ہوا واپس چلا گیا، اپنے ہی طور پہ کہہ گیا نہیں معاہدہ تجدید ہو گیا، حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا نو، نیور۔ دیکھیے یہ روپ آج مسلمانوں کو اگر اللہ کے نبی کا دکھتا ہے، یا آج کے دور میں کچھ مسلمان بھی جو ہی لفظ جنگ سنتے ہیں نا تو اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں، معذرت خواہانہ انداز ہوتا ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے کہ قاتل ائمت الکفر، مارو ان کفر کے سرداروں، لڑو، کیا بری بات ہے؟ آپ دیکھیے کہ اسلام نہ تو جنگ کو کوئی پروموٹ کرتا ہے اور نہ امن کو۔ اسلام کی نظر صرف ایک چیز پہ، وہ آپ لکھ لیں تو آپ کو بھی بہت سارے فیصلے کرنے آسان ہوں گے۔ اسلام کا ہدف کیا ہے؟ کہ غلبہ اسلام ہو۔ صلح کے ذریعے ہوتا ہے تو ماشاءاللہ، ویل اینڈ گڈ، ڈبل ڈیلائٹ، بہت اچھی بات ہے۔ صلح اگر مفید ہوگی تو اسلام کے لیے صلح کر لو، جیسا کہ حدیبیہ میں ہوا۔ لیکن بعض اوقات جنگ زیادہ مفید ہوتی ہے غلبہ اسلام کے لیے، تو کہا پھر اب جنگ کرو، کیا بری بات ہے؟ دوسرے جنگ کریں، وہ معاہدے کریں، وہ توڑیں، ان کا دل چاہے کریں، دل چاہے نہ کریں، دل چاہے وہ ایک ذمہ داری لیں پھر نبھائیں، دل چاہے نہ لیں، تو تم بڑے پولائٹ بنے رہو کہ نو آئی ایم ویری سافٹ ہارٹیڈ اور میری زبان بڑی نرم ہے، تو کوئی بات نہیں، تم ہمارے ساتھ کھیل کھیلتے رہو، ہمیں بیوقوف بناتے رہو۔ اسلام ایسے لیڈرشپ کو نہیں مانتا، اور آج مسلمانوں نے کوئی اسی لیڈرشپ نے کسی جگہ کا نہ رکھا کہ سب سے زیادہ ڈس آرگنائز مسلمان بن گئے۔ صرف ایک اس عادت کو اگر آپ دیکھ لیں اس پوری چیزوں، اس واقعات میں، ان واقعات میں اگر ایک چیز دیکھ لینا کہ اگر مکہ والے وعدہ نہ توڑتے تو مکہ فتح نہ ہوتا۔ انہوں نے خود ہی بنیاد فراہم کر دی کہ آؤ ہم پہ حملہ کرو۔ جب یہ ہوا اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ میں آپ کا حکم مان گیا، بس ایک میری خواہش ہے کہ مکہ والوں کو خبر نہ ہو میرے وہاں پہنچنے کی جب تک میں ان کے سر پہ نہ پہنچ جاؤں۔ پڑھ کے دیکھیں سیرت میں سے فتح مکہ کا واقعہ، کہا میں اب ان کے سر پہ پہنچوں گا۔ یہ واحد موقع تھا، یہ وہ موقع تھا کہ جس میں اللہ کے نبی نے اپنے قریبی لوگوں کو بھی نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور ایسے موقع آتے ہیں، آنے چاہیے۔ گھر کے بچوں کو بھی بھر کر کے راز دے دیں گے تو وہ تو آپ کی لنکا ڈبو دیں گے۔ آپ بچوں کو پتا چل جائے کتنے پیسے ہیں ماں باپ کے پاس میں، وہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان کی جان نہ نکال لیں کہ ہمیں سیل فون لے دیں، ہمیں گاڑی لے دیں، ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ ان بیچاروں نے اور بھی کتنی ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس موقع پہ بالکل خفیہ طریقے سے تیاری کی اور پہنچ گئے وہاں۔ कहा पहले आप बता दिया करते थे कुछ जंगों में, इसमें बताया ही नहीं, और रास्ता बदल के गए, क्योंकि शुरू में सीआईडीज होती थी, जरा देखो आज क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, बाहर लगा कि अल्लाह के नबी शाम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब वहां से रास्ता बदल के जद्दा के रास्ते से मक्का की तरफ आ गए, और बिल्कुल उनके सर पे पहुंचे तो उनको पता चला कि अल्लाह के नबी तो लश्कर लेके आ गए हैं। सुभान अल्लाह, क्या सीरत हमें सिखाती है, और आज जरूरत है फिर दोबारा इन्हीं चीजों को जिंदा करने की। तो इन सारी आयात में उसकी तरफ इशारा है कि अगर आज कोई अल्लाह के नबी पे इल्जाम लगाता है, जंग कर ली, ये कर ली, तो ना करते, तुम्हारे घर में एक कॉकरोच जाके तबाही मचाए तो तुम लग जाते उसको मारने के लिए, तो अल्लाह की जमीन पे कुफर सर उठा रहा है इस्लाम, वो घर जिसको अल्लाह के लिए बनाया गया था वो बुत कदा बना दिया था, 360 बुत रखे थे तो तुम देख के मुस्कुराते रहते, स्माइल, कोई बात नहीं, वो बाप गैरत से खाली है जो अपने बच्चों में बुराई देखे और मुस्कुराता रहे, अपनी बेटियों में बेगैरती देखे और मुस्कुराता रहे, खुद नमाजें पढ़ रहा है, बच्चे बेनमाजी, और वो उनको कुछ ना कहे कि नो मैं बहुत एडिकेटेड फादर हूँ, ऐसी माँ, ऐसा बाप, ऐसा लीडर, ऐसा बड़ा, ऐसा हुक्मरान, बिल्कुल किसी काम का नहीं रहता, जो हदूद को टूटता देखे, जो अहदों पैमान को टूटता देखे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जाओ फिर तुम इनके साथ मामला करो। अल्लाह के नबी का हाथ हालात की नब्ज पर होता था, जो वक्त का तकाजा होता था वो फैसला करते थे, आप खुद गए, हम मानते हैं, कोई शर्म की बात नहीं, सारा मीडिया कहता रहे हाँ अल्लाह का नबी इनका ऐसा, हाँ था, क्यों नहीं जाता, वो लीडर थे, कोई नीचे रहने वाले नहीं थे, खुद गए थे, बिल्कुल गए थे, उन्होंने मक्का पे हमले की कोशिश की लेकिन अल्लाह ने एक खून नहीं बहाने दिया, ऐसे हुआ, आज मुसलमान दबक जाते हैं, वो कहते हैं ना बगलों में झांकने लगते हैं, असल देखना क्या होगा, अब आप कहें कि आज सारे फिर मुसलमान निकले और जाके सर फाड़ने लग जाए लोगों के, नहीं, असल चीज ये होती है देखने की कि जिद्दोजहद किस मरहले पे आ चुकी है, मक्का में भी 13 साल थे, वहां क्यों नहीं निकले आप मैदाने जंग में, कुफ्फ अयदीकुम के हाथ की आयतें क्यों थी, क्योंकि अभी जिद्दोजहद उस मरहले पे नहीं थी, पहले आपने तरबियत की, किरदार साजी की, तजकिया की, अपनी फौज तैयार की, 13 साल की चोटें खा खा के सहाबा कराम पहाड़ बन चुके थे, फिर नहीं हिले, जब मुश्किल आई फिर जम गए, जैसे एक दरख्त को खूब खाद डाली जाए, जब पक जाए अच्छे तरह से वो दरख्त मजबूत हो जाए फिर उस पर फल आता है, तो इस वक्त देखना ये है कि क्या हम मुसलमान इस्लाम को फैला चुके, तालीम आम हो गई, किरदार साजी हो गई, मुसलमान सरदार तो कहाँ से आएंगे, कहाँ से मुसलमान सदर मिलेगा, कहाँ से आपको एक मुसलमान इमाम मिलेगा, पहले पीछे फौज तो मुसलमानों की हो, जो 5 वक्त की नमाजी हो, जो रोजा रखने वाली हो, तो पहले जिद्दोजहद का मरहला होता है, वरना पहले नमाज और बाद में वजू वाली कहानी होगी, जो हालात हों वैसा डिसीजन लेना एक अच्छे लीडर की पहचान होती है, और किसी भी आर्जी सूरत हाल को हमेशा की सूरत हाल पर लागू नहीं किया जाएगा, ना इस्लाम हमेशा सिर्फ सुलह की बात करेगा और ना इस्लाम हमेशा सिर्फ जंग की बात करेगा, और ना सुलह दबके होगी और ना जंग जो है किसी इंतकामी जज्बे पे होगी, दोनों के पीछे बात एक ही है, इस्लाम का फायदा किस में है, देखिए कुफर और इस्लाम में तौहीद और शिर्क का फर्क है, इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ये जंग का मसला भी वाज़े हो जाता है, और वो क्या है कि तौहीद और शिर्क ये दो डिफरेंट स्टाइल है, सोच फर्क, स्टाइल फर्क, इन दोनों का तस्फिया हमेशा कागजी कार्रवाइयों से नहीं होता, आपके एक तरफ सारे मुसलमान लीडर बैठ जाएं, आलिम बैठ जाएं, और दूसरे सारे नॉन मुस्लिम लीडर्स बैठ जाएं और बैठे निगोसिएशन करें, बहुत अच्छे डिस्कशन हो, बहुत डिबेट्स हो, नहीं होता, कहीं ना कहीं बीच में क्लैश होगा और जंग की सूरत आएगी, मैं इसकी मिसाल दे देती हूँ घरेलू सतह पे, आप कुरान सीख रहे हैं, कुरान आपको एक और ही दुनिया दिखा रहा है, आप घर जाते हैं वहां तो शिरका और शिरकिया रस्म और रिवाज का दौर है, क्या कभी बात करते वक्त जुबान ऊंची हो जाती है कि नहीं, हो नहीं सकता कि ना हो, दोनों तरफ से गुस्सा गर्मी सर्दी आती है, लेकिन इस्लाम आपको सिखाता है कि आप ना आगे से दबें, जब एक छोटे से घर में तौहीद और शिर्क की जंग आती है, एक खानदान में आती है तो आवाजें उठने लगती हैं, तो जब इतने बड़े ग्लोब पे आपने इस्लाम को लेके आना है, मुशरिकों को निकालना है, तो चीखें नहीं मारेंगे, प्यार से करेंगे, गो गो गो, कोई कह दे कि सारी दुनिया के कॉकरोच मारने हैं, तो आप देखिए कि हो सकता है इतना स्ट्रॉन्ग किस्म का स्प्रे करना पड़े कि लोग कितने दिन तक उसकी वजह से बीमार रहे। करना पड़ेगा, बाज लोग घरों में करवाते हैं ऐसा स्प्रे क्योंकि मजबूरी है निकालनी जो है गंदगी। तो दुनिया से जमीन पे अल्लाह का कंट्रोल है, ये जमीन अल्लाह का मुल्क है और कोई बादशाह अपने मुल्क में किसी दूसरे का इक्तदार पसंद नहीं करता। तो लिल्लाहि मा फिस समावात उसकी है, तो जहां जहां कुफर के और जुल्म बर्बरियत के झंडे खड़े हैं वहां क्लैश होगा। तो कहा ला तकातलून, गैरत दिलाई जा रही है, कमजोरी दिखाओगे क्या हो गया तुम्हें, तुम पीछे जाओगे दब जाओगे, नहीं उठो काम करो, उठो इरादा करो देखो। और आप देखें कि अल्लाह ताला यहाँ फिर नबी सल्लम के जरिए से ये बात साफ तौर पे बता सकते हैं कि वो क्या, कि हर मुआशरे में सब तरह के लोग होते हैं। आइए पहले आयत नंबर 14 को देखते हैं। कातिलूहुम, उनसे लड़ो, करो जंग, क्यों शर्मिंदा होते हो, क्या होगा, युअज्जिबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, अल्लाह उनको तुम्हारे हाथों से रुसवा करेगा। कैसे या क्यों, क्योंकि पिछली कौमों के साथ मामला फर्क था, उनको अल्लाह ने आसमान से तूफान भेजकर, बिजली भेजकर, सैलाब भेजकर, यानी मुख्तलिफ आफात के जरिए से मार दिया। और ये बात हम पीछे कई बार पढ़ चुके हैं कि अल्लाह के नबी के दुश्मनों के साथ मामला थोड़ा फर्क था, अल्लाह ने नबी के जरिए से, जंगों के जरिए से उनको मरवाया गया। आप कह लें कि पूरे काफिर एक ही दफा नहीं मारे गए बल्कि मुख्तलिफ जंगों के जरिए मरवाए गए, ठीक है। तो कहा कातिलूहुम युअज्जिबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, लड़ो, लड़ाई करो इनसे क्योंकि अल्लाह इनको तुम्हारे हाथों से मरवाएगा। व युख्जिहिम, और इनको रुसवा करेगा। व यंसुरकुम अलैहिम, और तुम्हारी मदद करेगा इनके खिलाफ, अल्लाह तुम्हें इन तुम्हारे तुम्हारी वजह से इनकी मदद करेगा, यानी तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है। व यशफी सुदूर कौमिम मोमिनीन, और ठंडा करेगा ईमान वालों के सीनों को, होगा क्या, व युस्किब गैज़ कुलूबिहिम, और दूर फरमा देगा गुस्सा उनके दिलों का। व यतूबुल्लाहु अला मन यशा, और अल्लाह अपनी रहमत से तवज्जो फरमाता है जिस पर चाहता है, क्योंकि वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला खूब जानने वाला और खूब हिकमत वाला है। इन आयात में एक और ही खूबसूरत अंदाज से नबी सल्लम को रग़बत दिलाई गई कि आप उठिए और बिल्कुल शर्मिंदा ना हो, बिल्कुल अपने आप को इस पे गिल्टी में ना लाएं कि हम जंग करेंगे फिर हमारे नाम के साथ ये लफ्ज आ जाएगा कि अल्लाह के नबी ने जंगों के जरिए इस्लाम फैलाया और मुसलमान तो टेररिस्ट होते हैं। नहीं, पूरे शौर से उठिए और जो लोग अल्लाह के निज़ाम में खलल डाल रहे हैं उनसे निपटिए। देखिए, एक जहाज हो और जहाज में कोई हाईजैकर आ जाए, जो जहाज को हाईजैक करना चाहते हैं, तो पायलट का क्या काम है? आप सुनते हैं ना कि पायलट खुद ही जहाज गिरा देते हैं ताकि मुल्क के राज ना चले जाएं, या कुछ और मामला होना वो बेहतर है कि इनको मार दें या खुद भी मर जाएं। ये मिसालें मिलती हैं ना दुनिया में। अब कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को अपने हाथों में लेकर अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं, उनकी सोच बदलना चाहते हैं, मुसलमानों की नस्लों को ट्रैप कर रहे हैं। तो कहा कि तुम इसी जहाज को गिरा दो, ये सारे आइम्मतुल कुफ्र के सर गिरा दो। अब आप देखिए कि मदीना में जो मुसलमान थे ना, सारे एक दर्जे के नहीं थे। तीन किस्म के गिरोह थे जो जंग नहीं करना चाहते थे, जैसे आज के दौर में भी एक बहुत बड़ा गिरोह मुसलमानों का ही जंग नहीं करना चाहता। पहली किस्म के वो लोग थे जो थे तो जाहिरन मुसलमान, लेकिन दिल में निफाक था। अब वो निफाक की वजह से इस्लाम को तो फायदा नहीं देना चाहते थे ना, तो वो चाहते थे कि जुबान पे लफ्ज रखो सुलह का, हम बड़े अमन पसंद, हम बड़े सुलह जू, ये नारे लगाते और असल में दिल में निफाक था। तो निफाक को छुपाने के लिए जंग नहीं करना चाहते थे। एक दूसरी किस्म के गिरोह था, दूसरा गिरोह था, वो कौन थे, जिनके दिलों में रहवानियत वाला तसव्वुर दीन था। ये न्यू मुस्लिम्स थे, कन्वर्टीज थे, कुर्बानियों के रास्ते से इस्लाम पे नहीं आए थे बल्कि मान लिया और आ गए, बना बनाया एक सजा सजाया इस्लाम का कमरा इनको मिल गया, आके बैठ गए। इनके दिल में ख्याल आया कि दीन तो सिर्फ लव का नाम है, इफेक्शन, लव, अमन, आशती, प्यार, मोहब्बत, भला दीन का जंग से क्या कम। इस वजह से ही इस्लाम नहीं लेना चाहते थे, ये कहते थे नहीं 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 कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे समझें कि जैसे इन्होंने इस्लाम के लिए कोई कुर्बानी जो नहीं दी थी, तो ये इस्लाम के उस कमरे को बचाना ही नहीं चाहते थे, ये दूसरा गिरोह था, इसलिए कहते थे ना करें। आप अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि ये अंडर ट्रेनिंग गिरोह था, अब इनकी ट्रेनिंग की जरूरत थी, अभी इनका तज़किया नहीं हुआ था। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे माँ बाप ने एक एक पाई जमा करके घर बनाया होता है और बाद में बच्चों को वो घर बना बनाया मिल जाता है, तो दोनों की सोच फर्क होती है ना। तो आप समझ लें कि ये बच्चे थे दीन के अंदर, अभी न्यू थे, अभी इनका मेंटल लेवल इतना हाई नहीं हुआ था कि इस हिकमत को समझ सकें कि कभी कभी लड़ाई भी करनी पड़ती है। एक तीसरा गिरोह भी था जो सच्चे मोमिनों का था, मुखलिसीन थे, निफाक तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो कुर्बानियां दे दे के मक्का से आए थे, हिजरतें की, मारे खाई, इसके बावजूद भी वो जंग नहीं करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये मुहाजरीन का गिरोह था जिनके कुछ लोग, रिश्तेदार, घर बार अभी मक्का में थे। इनको डर क्या था कि अगर मक्का वालों से जंग छिड़ गई तो हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, उनकी जानें खतरे में, और हमारे माल जो हैं वो छीन लेंगे। तो ऐसे लोग भी जरा थोड़ी पसोपेश कर रहे थे कि ये काम ना किया जाए। इन सारी बातों को यूं ले लें कि हम सब यहां बैठे हैं ना, कोई काम कहता है कि ये काम कर ले, तो हम सारे मुख्तलिफ ग्रोहों में बट जाएंगे, और इंशाल्लाह कुरान पढ़ने वालों से तो यही उम्मीद है कि सिर्फ तीसरे ही ग्रोह में होंगे वो, किसी काम से अगर रोका जाए, मोमिनीन सादिकीन। लेकिन कोई ना कोई मुफाद होता है। मिसाल देती हूँ कि किसी को ये कह दिया जाए कि चले हम आज 2 बजे की बजाय 4 बजे तक पढ़ते हैं, या आप क्या ख्याल है क्लास को 4 बजे ना कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे कहेंगे करना तो चाहिए लेकिन मजबूरी है, किसी के बच्चे, किसी के घर, हाँ तो इखलास है, ईमान भी है। या कह दिया जाए चले आए सैर करने चलते हैं, एक ट्रिप कर लेते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ चलते हैं, कुछ चाहेंगे जाना लेकिन वो सोचेंगे नहीं तैयारी बहुत करनी पड़ेगी, बहुत अरेंज करना पड़ेगा कुछ ऐसे। तो हर गिरोह में इस तरह के लोग होते हैं। तो इन सारी आयतों में जो आखिरी हमने पढ़ी, अल्लाह ने इन्हीं सारे गिरोहों को मुख्तलिफ तरीके से खिताब किया कि ये लोग जंग से अगर रुक रहे हैं तो वजह समझो कि ये क्यों नहीं ये काम करना चाहते। हर रुकने वाला एक दर्जे का नहीं होता। मसा आपने कितने लोगों को कोर्स की दावत दी होगी, कितने आए और बीच में चले भी गए, तो मत सोचिए कि सारे एक ही दर्जे के थे, मत सोचिए वो मुनाफिक थे, मत सोचिए कि उनके अंदर कोई निफाक था। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े मुखलिस होते हैं तो वो फिर भी काम नहीं कर पाते क्योंकि रास्ते की कुछ रुकावटें होती हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि तुम इन बातों से ना डरो। और आखिरी बात जो इस सबक की, जिस पे हम इस सबक को ख़त्म करते हैं, वो क्या है लफ्ज़, व यशवी सुदूर कौमी मोमिनीन, अल्लाह ईमान वालों के सीने ठंडे करेगा। तुम कहते हो जंग बुरी होती है, अल्लाह कहते हैं इससे ईमान वालों के सीने ठंडे होंगे। कैसे? लफ्ज़ सीने को ठंडा करना, इसको जरा इमेजिन करें पहले आप। अमूमन लोगों का सीना कैसे ठंडा होता है? जब दुश्मन को तकलीफ में देखे या जिसने उस पर जुल्म किया उससे बदला ले ले। लेकिन यहां सहाबा कराम की खूबी बयान की गई कि उनके सीने कैसे ठंडे हुए थे, काफिरों को मरता देखकर नहीं, काफिरों को मुसलमान होता देखकर। किसी तरह ये काफिर इस्लाम कबूल कर लें या आग से बच जाएं। अगर सहाबाए कराम अपने नाम, अपनी जात के लिए जंग कर रहे होते ना, तो उनका हदफ होता काफिरों को मारो, खत्म करो, थोड़े होंगे तो माले गनीमत हम में बटेगा, थोड़े होंगे तो वसाइल के ऊपर कब्जा हमारा होगा। अपनों को ही मरवा देते हैं लोग सिर्फ इसलिए कि हमें ज्यादा मिल जाए। तो इनको अल्लाह ने ठंडा किया। इनकी असल खुशी क्या थी कि लोग इस्लाम पे आ जाएं, इस्लाम गालिब हो, हम अपनी नस्लों को संवरता देखें। हमें इसकी परवाह नहीं है कि हमने गोली चलाई है कि नहीं चलाई, हमें ये खुशी है कि किसी तरह इस्लाम आ गया, हमने पढ़ाया, हमने बताया कि नहीं, लेकिन लोगों तक इस्लाम गया, लोग मुसलमान हो गए। इस्लाम को फैलता देखकर ऐसे लोगों के सीने ठंडे होते हैं। हम अपने आप को देखें, आज हमारा सीना कैसे ठंडा होगा? पूरा काफिरों का मुल्क तबाह हो जाए, पूरी दुनिया के काफिर किसी वबा का शिकार हो। अपने मुल्क अपनी जगह पे रख के सोचें, हम इस मुल्क में रहते हैं, हम इस शहर में रहते हैं, हमारा क्या दिल चाहेगा कि यहाँ सारे काफिर बेदीन खत्म हो जाएं और हम थोड़े से मुसलमान रह जाएं और दंदनाते फिरें कि सारे वसायल हमें मिले? नहीं, हमारा सीना कब ठंडा होगा जब यहाँ इस्लाम की बहारें आएंगी। कुफ काफिरस्तान की बजाय वो इस्लाम का کا نام لینے والا ملک بنے. اسی طرح ایک دوسری وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابہ کے سینے ٹھنڈے ہوئے, اور وہ کیا تھا کہ ان کو معاف کر دیں جنہوں نے ستایا. دل ٹھنڈا ہوتا ہے دو طریقوں سے. ایک ہوتا ہے انتقام لینے سے, وقتی طور پہ ٹھنڈک ملتی ہے, ہا 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 بدلہ لے لیا, بچ گئے, باپ نے کے بدلے میں اس کے بیٹے کو مار دیا. لیکن یاد رکھے کہ انتقام کے بعد زیادہ آگ لگتی ہے. جو ٹھنڈک دشمن کو اور مخالف کو اور ستانے والے اور دکھ دینے والوں کو معاف کرنے سے ملتی ہے نا, وہ پائیدار ہوتی ہے. آپ کبھی دیکھیں کہ آگ ہو, اس کو بجھانا چاہیں, ایک ہوتا ہے ٹھنڈا پانی کا چشمہ اور ساتھ ہی گرم پانی ہے. ٹھنڈے پانی سے تو آگ بجھتی ہے نا, یہ بتائیں کیا گرم پانی سے بھی آگ بجھتی ہے کہ نہیں؟ جی بتائیے. بجھ جاتی ہے. سینے کی آگ جو بجھتی ہے نا, وہ غصے کے باوجود بھی معاف کرنے سے بجھتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صحابہ کرام کی ان ساری خوبیوں کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ تم بھی اپنا معائنہ کر لو, اپنے آپ کو دیکھو. اگر پورے سبق کا خلاصہ کر لینا تو یہ بنتا ہے کہ مسلمانوں کو شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نبی کے اس کردار پر اور اسلام میں جو جنگیں لڑی گئیں اس پہ پریشان نہ ہو. جو جیسا کرے گا ویسا اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. دبی دبی صلح جس کے اندر اسلام کی پسپائی ہو, اسلام کی بے عزتی ہو, وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. جو دین کے نام پہ تانے دیں, تشنیع کریں, صحابہ کرام کو گالیاں دیں, اللہ کے نبی کو تانے دیں, ایسے لوگ ایک وقت آ سکتا ہے کہ مسلمان ان سے بھی لڑائی کریں. لیکن کب ہوگا؟ جب اسلامی جد و جہد اپنے آخری مراحل پہ پہنچ چکی ہوگی. پھر اگلی چیز ہم نے رکوع میں سبق میں سیکھ لی کہ وعدے توڑنے والے یا کمٹمنٹ کو نہ نبھانے والوں کا بھروسہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. پھر اگلی چیز ہم نے دیکھی کہ سب سے زیادہ ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. رزق روٹی اللہ کے ہاتھ میں, کوئی بڑی طاقت کسی کو کچھ نہیں کھلا پلا سکتی, اور مسلمان کا ہدف یہ ہے کہ وہ اسلام کو غالب کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمارا اتنا کو حصہ ہی ڈلوا دے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلی ہوئی آگ میں ایک چڑیا نے ڈالنا چاہا. روایات میں آتا ہے کہ جب آگ جلائی گئی تو ایک چڑیا تھی تو اپنی چونچ میں پانی بھر کے لائی, کہا میں ابراہیم کی آگ بجھاؤں گی. تو لوگوں نے کہا کہ تیرے اس قطرے بھر پانی سے کیا آگ بجھے گی؟ کہیں گے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, بس میں تو کل قیامت کے دن اللہ کو کہہ دوں گی کہ اللہ میری چونچی اتنی تھی. تو ہم سب بھی چونچ بھر کے کوششیں کر رہے ہیں اسلام کے لیے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص دے, اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.